हम सभी प्यारे बाबा के वर्तमान अति सौभाग्यशाली लाडले सिक्की लधे नूरे रतन बच्चे बन गए, पर हम जैसे कि बाबा विभिन्न मुरलियों में कहते हैं कि सच्चे भक्त ही तड़प तड़प कर इस ज्ञान को समझकर उतने ही अच्छे बच्चे बनेंगे। कई बार बाबा ने अपने महावाक्यों में यह भी बोला है कि अंतर के मंतर को जानो तो जादुई जंतर की शक्ति हम आत्माओं को प्राप्त हो जाएगी। और भक्ति में कहा गया है भक्ति ज्ञान वैराग्य, पर थोड़ा सा ज्ञान मार्ग में आकर आध्यात्मिक मार्ग यात्रा को जब हम अपनाते हैं तो वो थोड़ा सा मोड़ होकर ज्ञान भक्ति और वैराग्य अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति हो जाता है। पर होता कैसे है? बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा अंतर होता है, उसको हम क्रमशः समझेंगे कि कैसे। आप सभी ये तो पक्का है कि भक्ति मार्ग के अनुभवी जन्म जन्मांतर से 2500 वर्ष के बच्चे बैठे हो, आपके लिए कोई नई बात नहीं है, पर बाबा ने उसको नई बात कहा तो हम देखेंगे। सबसे पहले जब हम भक्ति करते थे तो वहां भी तीन चीजों का प्रथम महत्व तो भक्त बनने के लिए था, स्वच्छता, शुद्धता, परहेज, पवित्रता, जिसको टोटल स्नानम ध्यानम कहा है। लायक ही तब मानते थे कि मंदिर में जाने लायक, प्रभु दर्शन लायक, प्रवचन सत्संग सुनने लायक आप हो ही तभी जब आप नहा धो के कपड़े बदल कर आए हो। इतना तो हमको KG1 की पढ़ाई कहे, भक्ति मार्ग की प्रथम श्री कहे, प्रभु श्रद्धा का प्रथम सोपान कहे, वहां हमें सिखाया गया। पर जैसे ही हम ज्ञान मार्ग में आए तो सबसे पहला ज्ञान, अभी थोड़ा आपको फाउंडेशन से समझा रहे हैं, इस ईश्वरी विद्यालय में भी पहला फाउंडेशन ज्ञान आपको मिला कि मैं देह नहीं, मैं एक शुद्ध आत्मा था या थी या हूं। हमें समझाया गया शरीर और आत्मा मिलाकर बराबर जीवात्मा बना है, पर भक्ति में हमको ओनली ये नॉलेज थी कि मैं देह हूं। तो हमारा सारा कारोबार देह भान होने के कारण शरीर के प्रति सिमट कर रह गया। परंतु अगर हम सोचे तो वहां भी हमको बहुतों ने ये इशारा दिया कि मन में ला और तन को धोए, फूल को चाहे कांटे बोए। वहां भी इशारा मिला मैली चादर ओढ़ कर द्वार कैसे आऊं। वहां भी गिड़गड़ाते रहे विषय विकार मिटाओ, तो सारा शरीर का स्नान करने पर भी मन कहीं ये खोज रहा था कि आखिर सच्चा स्नान क्या है। यहां बाबा ने बताया और आपके प्रसिद्ध रामायण विदित ग्रंथ में भी ये बताया राजा जनक के द्वारा कि राजा जनक भी बहुत पूजा पाठ भक्ति अति श्रद्धालु राजा थे, पर उन्हें भी ये ज्ञान पिपासा रहती थी कि कोई मुझे सच्चा विवेकवान ज्ञान करा दे। भावना तो भक्ति की थी, जिसके फल स्वरूप वह अपने राज्य में प्रतिदिन महीनों सालों सारे शहर के या उनके एरिया के सभी विद्वान पंडितों को बुलाकर प्रवचन सभा लगाया करते थे, महीनों उनको ठहराते थे, वस्त्र खान पान आदि स्थान की व्यवस्था भी करते थे और रोज उनके प्रवचन अपने दरबार में रखते थे। पर इसी तलाश में कि कोई मुझे सच्चा ज्ञान करा दे। एक बार की बात आती है कि राजा जनक ने बहुत सारे प्रवचनकर्ता को जब बुलाया, रोज सभा में प्रवचन चले, तो एक दिन एक प्रवचनकर्ता अष्टावक्रती जो आठ जगह से शरीर से टेढ़े थे, उन्होंने भी निमंत्रण दिया और जैसे ही वो सभा में पहुंचे तो राजा जनक ने उनका वेलकम किया, आइए महात्मा जी आइए पधारिए। तो जैसे ही वो सभा के बीच, आज की वर्तमान स्टेज पर कहें, वहां तो सभा का बीच होता था, वहां पहुंचे तो सारी सभा उनको देखकर हंस पड़ी। तो जैसी सभा हंसी तो राजा जनक को अष्टावक्र जी ने कहा, राजन ये सभा आपने चमड़ों को देखने वालों की कैसे लगा रखी है, यहां सब चमड़े को प्यार करने वाले बैठे हैं। तो राजा जनक ने कहा, महाराज ऐसे मत बोलिए, बहुत बड़े बड़े प्रवचनकर्ता बैठे हैं। बोले, नहीं राजन, इसमें एक भी आत्मज्ञानी नहीं है, सब चमड़े से प्यार करने वाले बोले बैठे हैं। तो राजा ने कहा, कैसे? तो राजा जनक अष्टावक्र जी ने कहा कि देखो, ये सारी मेरी टेढ़ी आठ जगह से चमड़ी की वक्र अष्टवक्र चमड़ी को देखकर हंस पड़े, अगर इसमें कोई भी आत्मज्ञानी होता तो मेरी आत्मा तो टेढ़ी नहीं है ना, सभी की बिंदी है, शरीर से मैं टेढ़ा हूं ना, तो ये मुझे देखकर हंस पड़े तो इसका मतलब इन्हें आत्मज्ञान नहीं है। तब राजा जनक को ये नॉलेज हुई, ये ज्ञान हुआ, विदेही जनक कहलाए, देह में कारोबार में स्थित होते हुए भी ग्रस्त मार्ग में कमल पुष्प समान राजा कहलाए कि शरीर को चलाने वाली सत्ता आत्मा है। ये पॉइंट उनको क्लियर हुआ तो उन्होंने सभा विसर्जन करके अष्टावक्र जी से प्रवचन सुने। तो वैसे ही ये इशारा वहां भी मिला, यहां भी वो इशारा या स्थिति आपको बाबा बता रहे हैं कि बच्चे तुम्हें जो पुरुषार्थ करना है वो आत्मा के लिए करना है, क्योंकि आत्मा ही करता है और आत्मा ही भरता है। जैसे कि एक मोटर के एक्सीडेंट पर ड्राइवर रेस्पॉन्सिबल होता है, अगर एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर को जेल होती है, सजा होती है, वो कूद कर भागता है, लोग पीटते हैं कि तूने गाड़ी गलत चलाई, तो वो गाड़ी तो जड़ है, उसको चलाने वाला चेतन किधर ड्राइव कर रहा है, क्या पीकर क्या खाकर कर रहा है, क्या साइट सीन देखकर कर रहा है, कहां नजर जा रही है, उसने एक्सीडेंट किया तो रेस्पॉन्सिबल किसको बनाया गया? ड्राइवर को, यानी उसी को सजा मिली। ठीक ऐसे ही भक्ति मार्ग में ये नॉलेज नहीं होने से वो आज इतना बड़ा कुंभ के स्नान पर, घर के स्नान से जब मन तृप्त नहीं हुआ, रोजमर्रा घर में नहाने से, क्योंकि पहली विधि थी ना स्नान, तो उन्होंने सोचा आप चलो गंगा में त्रिवेणी स्नान करके बाहर जाके करके जाए, शायद मेल साफ हो जाए, तिल आदि से स्नान करेंगे लपेट के मसल के तो हो जाए, वे वह राइट ही प्रकार से उस स्नान को महत्व दे रही थी कि हमारा मैल धुल जाए, शरीर के मैल को साफ कर रहे थे, वस्त्र साफ पहन रहे थे। और यहां बाबा ने धीरे से हमारे कान में मंत्र दिया कि बच्ची मैंने वस्त्र शब्द बोला तो है, कपड़ा कहा तो है, स्नान बोला तो है जब तुम ज्ञान में आए, पर कौन सा शरीर रूपी वस्त्र को भूलना था। तो लोगे में दुनिया में देह रूपी वस्त्र बना के फूल के नागा बाबा बनकर या सन्यासी बनकर लोगों ने वस्त्र का त्याग किया, पर समझ ही नहीं पाए वस्त्र ये शरीर है जिसको पहनते ओढ़ते भी हमें इसके बॉडी कॉन्शियसनेस को भान को छोड़ना है, तो वो तो नहीं कर पाए ना। तो उन्होंने भौतिक स्नान को महत्व दिया और गंगा आदि में आपको नहला दिया, पर इधर आकर डाइवर्शन भक्ति से ज्ञान की ओर आपको क्या मिला कि नदियां कौन, स्नान क्या। वास्तव में आपने देखा होगा जितनी भी नदियां हैं सारी स्त्रीलिंग है, पुरलिंग एकमात्र नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी जो शिव बाबा का महारथ है, और पुरलिंग होते हुए स्त्रीलिंग मां का काम किया तो आसाम में ब्रह्मपुत्रा नदी और उसी के संगम पर गंगा सागर एक बार सारे तीर्थ बार बार कहे हैं, सच्चा कुंभ कहा है लौकिक दुनिया में। अभी यहां आकर बाबा ने बताया जितनी भी चैतन्य देवियां हैं, जितनी भी चैतन्य बहने मानी बहने वाली, इनके धारा प्रवाह में ज्ञान स्नान ज्ञान सुनाने का जो धारा प्रवाह है, बोलने की लिंक है, ज्ञान की धारा में नहाने से ये था। और ज्ञान स्नान कराने वाली चैतन्य ज्ञान गंगाएं वो कुंवारी कन्याएं वो बहने थी जिनको नदी नाम देकर यादगार में गंगा कावेरी गोदावरी सरस्वती आदि पर मेला लगाकर पानी के स्नान को महत्व देकर अर्धपूर्ण संपूर्ण स्नान कराकर भक्तों ने शरीर को कितनी मेहनत से कितनी गहराई में जाकर डुबकी लगाकर स्नान किया। मैं तो रहा ना स्नान का महत्व, पर यहां बाबा ने स्नान को किधर मोड़ दिया, किधर मोड़ा आप बता सकते हैं? पवित्रता की तरफ। शरीर स्नान तो करना ही है क्योंकि देह धन आत्मा बराबर जीवात्मा, तो 50% के जीवन का पाठ स्नानम का अच्छे स्वच्छ पानी से स्नान के स्वच्छ वस्त्र पहनना तो पहले ही सीख लिया था हमने, अब सफेद वस्त्र ले लिए स्वच्छता के प्रतीक और प्रूफ देने के लिए। पर स्नान माना ब्रह्मचर्य पवित्रता, कितना ही स्नान किया पर अगर प्यूरिटी की पावर नहीं आई, जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य जीवन नहीं आया जिसको बाबा ने हंसते खेलते पाठ पढ़ा दिया कि हम एक पिता की संतान एक बाप के बच्चे, बहुत बड़ा पाठ हमने पवित्रता का नहीं पढ़ा, ये स्वभावतः था। हम गाते थे ढोलक मजीरा पर बजाते थे कि हम सब एक पिता की संतान है, क्योंकि मनुष्य की दृष्टि और वृत्ति कृति चंचल लौकिक में भी कब होती है। आप देखेंगे अपनी खास बहन के प्रति चंचल चाहे दृष्टि नहीं आई आएगी, कलयुग में भले आ रही हो परंतु नहीं आती, पर जैसे ही हमको ये पता पड़ता है घर में हमें कोई भावना बहन के प्रति संबंधियों में जहां प्योरिटी वहां नहीं बनती, पर जैसे सड़क पर गए या कहीं दुनिया में गए तो हमें याद आता है कि मेरी खास बहन मेरे पिता की जो बच्ची है वो है घर में, ये जो बाहर विचर रही है ये दूसरे बाप की बच्ची है, तो रिश्ता हो सकता है भावनात्मक हम इसे गड़बड़ कर सकते। तो हमारी चंचलता क्यों आई हमें, हमारी प्योरिटी का हनन कब हुआ, जब दो पिता का ज्ञान आया। जहां ये भावना हमारे बाबा ने हमें भरी कि हम सब एक ही स्थान पर एक ही परिवार पे एक ही बाप के बच्चे भाई भाई या भाई बहन है, तो आप सब यहां प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे होंगे कि कितनी प्योरिटी, कितनी चंचलता रहित, कितना सेफ्टी वाला स्थान है। क्यों है? क्योंकि सबका नजरिया और नजारा क्या बन गया, हम सब एक पिता की संतान हैं, पवित्र हैं, हम आपस में भाई बहन या भाई भाई हैं। तो हमारा ज्ञान स्नान वो पानी के स्नान होते हुए भी ये भावना नहीं बिगड़ी, बनी, बिगड़ गई। तीर्थ स्थान पर भी नहीं बनी, वहां भी बुराइयां होने लगी, चंचलता होने लगी, पर यहां पर जैसे ही आप ये जिंदा ज्ञान गंगाओं के धारा प्रवाह के संपर्क में आए तो ये पवित्रता के पाठ ने आपको वो शुद्धता, वो नवीनता, वो भव्यता, वो दिव्यता, वो रूहानियत हमें अनुभव कराती। किस बल पर? मात्र ज्ञान स्नान के बल पर, है ना? सब अनुभव कर रहे हो ना, ये अनुभव लेकर जाएंगे ना कि इतनी सारी भीड़, इतना सारा होते हुए भी आज हमको हर जगह मंदिर जैसा क्यों प्रतीत हो रहा है। वहां जड़ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं थी, खाली जड़ में प्राण डाल रहे थे भावना भर भर के। यहाँ चैतन्य देवियां, चैतन्य स्नान कराने वाली, चैतन्य धारा प्रवाह वाली ज्ञान गंगाएं, वैरायटी क्लासेस, वैरायटी चीजें आपको स्टेज पर चलते फिरते मिल रही हैं। ये सब देवियां हैं, ज्ञान गंगा हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में भी जब गंगा स्नान करके निकलते थे तो सफेद वस्त्रधारी देवी गंगा माता वहां बैठी उनको चढ़ावा चढ़ाते थे। पर ये समझ नहीं पाए कि जड़ देवी की यादगार में जो ये जिंदा देवी की यादगार में जड़ता जो पानी को दृढ़ता से कह दिया है, उस स्नान से हमें फायदा नहीं होना था। फायदा होना था ज्ञान स्नान अर्थात पवित्रता से, शुद्धता से, शुद्ध विचार से। इसका प्रतीक जैसे हमने स्नान किया, हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आप सभी अनुभवी हैं, चमड़े के जूते कहां उतारते हो? कोई कहता है मंदिर में पहन कर आओ, बाहर उतारो, चमड़े का पर्स मत लाओ। चमड़े के भान से अज्ञान भक्ति मार्ग में भी परहेज था, मना करते थे। पर वहां भी एकाध कहानी ऐसी है कि कोई एक भक्त थे बहुत बड़े, अभी मुझे स्पष्ट उनका नामांकन नहीं याद है, तो कहते वो जूते लेके घुस गए खो ना जाए, तो घुसे तो पंडित ने उनको डांटा, भगो भगो यहां से, तो उन्होंने मंदिर के पिछवाड़े चले गए, वो बैठ गए ध्यान करने, तो मंदिर उधर घूम गया। तो वहां भी कहीं पर यह टारगेट था कि भगवान को भौतिक चमड़े से इतना परहेज नहीं था जितना परहेज शरीर के भान रूपी चमड़े से था। तो कहा चमड़े का जूता उतारो, वास्तविकता क्या थी? चमड़ी का भान उतारो। जैसे मंदिर में आओ तो चमड़ी का भान भूल जाओ, जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद, प्रांत भेद, आयु भेद, घर में संबंधियों का भेद, मैं दुरानी तो जिठानी फलाने का भेद, काले गोरे का भेद, सुंदर असुंदर कितना भेद, सब भूल जाओ। मूर्ति के आगे आके सोचो मैं आत्मा परमात्मा की संतान। ऐसी मधुबन में चैतन्य मूर्ति के आगे आप आ गए, आपस में भी कोई जाति भेद नहीं, कोई धर्म भेद नहीं, कोई भाषा भेद नहीं। सुनो आप कितने राष्ट्र के लोग, कितने जगह के लोग, ऑल इंटरनेशनल व्यक्ति यहां बैठा, पर सब एक पिता के बच्चे, क्योंकि आत्मा तो किसकी संतान है? बाबा की। तो ये चमड़े का भान वो मिटाना चाहते थे, इसलिए इशारा बाबा ने जब ज्ञान सुनाया संगम युग पर तो उन्हें याद रहा भक्ति में द्वापर में जब गिरे कि चमड़ा चमड़ा भगवान करते थे तो उन्हें जूते उतारो। और स्वच्छता की दृष्टि से हम और आप भी बाहर उतार रहे हैं, पर वो ईश्वर से उसका कोई कनेक्शन नहीं है कि भगवान बड़ा खुश होगा चाहे आपने लाखों की चमड़े की जूती उतारी। ये शरीर है चमड़े का जूता, इसे उतारो बाहर, बैक, यानी भूलो कि मैं शरीर हूं। पर क्या समझकर ज्ञान सुनो या बाबा का कारोबार करो? आत्मा समझकर। तो इसका प्रतीक उन्होंने चमड़े का भान उतारा। फिर आप देखेंगे जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आप क्या बजाते हैं? घंटा लगे रहते हैं, टन टन बड़े बड़े घंटे। तो वहां भी भगवान के लिए कहा घंटा बजाओ, अल्लाह के नाम पर एक आना पांच पैसे चढ़ाओ, इतना नियम तो भक्ति में भी दिया गया था। और आप हम सभी करते भी थे, पर जैसे ही हमें बाबा का समय या ये ज्ञान या संगम युग मिला तो कहा तो था घंटा बजाओ, पर ये भूल गए कौन सा घंटा बजाओ। वो पीतल के टंगवा दिए बड़े बड़े, वो बजा के सोचे हो गए कुछ, पर घंटा बजाओ 24 घंटे में से कम एक घंटा तो बजाओ बाबा के निमित्त। मुरली सुनो, सेवा में लगाओ, हर चीज में लगाओ, एक घंटा तो लगाओ। 24 घंटे लगाए तो झूमर वाली देवी तो अलग ही हो गई, 84 घंटे वाली हो गई, 24 घंटे वाली हो गई, पर एक घंटा बजाओ ये कहा था। और भगवान के नाम पर एक बार भगवान के स्थान पर आओ, मंदिर में आओ, एक आना चढ़ाओ। तो उनने एक आना 6 पैसे चढ़ा दिए, 5 पैसे चलते थे जब, चढ़ा दिया 1 रुपया 1.25 रुपया चढ़ा दिया। अब चढ़ाना क्या था, देह के प्रति भले तो वो पैसा था, पर आत्म ज्ञान जब हमको यहां मिला तो हमने क्या समझा कि आश्रम में कम से कम एक बार पूरे दिन भर में तो आओ, एक बार तो आओ, तो अल्लाह के नाम पर एक घंटा बजाओ और एक आना चढ़ाओ। वो भी हम सभी कर रहे हैं और ज्यादा ही चढ़ा रहे हैं, पर यादगार तो बनी थी ना। फिर आप देखेंगे चंदन घिसा, पूजा की विधि में क्या होता है, और कोई विधि तो चलो पंडित पुजारी करते, मोटी विधि तो आप ये करते ही करते हैं ना, नमस्ते, उससे मन नहीं भरा तो लेट कर नंदवत प्रणाम, और मन नहीं भरा तो कांवरे लेकर आके प्रणाम, और मन नहीं भरा तो लेट लेट की सड़क पर प्रणाम, मेन प्रमाण प्रणाम वहां आके। विभिन्न प्रकार से भावनाओं को बढ़ाया, पर मोटी भावना रही नमस्ते, आंख बीच कर प्रणाम किया ना, तो कुछ भी नहीं कहता, नमस्ते तो कर। अब नमस्ते करने का ढंग आप देखो, नमस्ते भी कैसी, मूर्ति को नमस्ते करिए कि मूर्ति आप जो कहेंगे हम आपका आंख मूंछ के कहना मानेंगे। आंख बंद करके नमस्ते करते हैं, हृदय से लगा कर, साधारण प्रथा नहीं है। अब वो प्रथा अगर आप यहां पैर छुएंगे नमस्ते दीदी के, नहीं नहीं भाई बहन कहेंगे आपस में ही नहीं करो, ओम शांति बोलो। पर नमस्ते क्या है, नमस्ते मतलब अपने से बड़े के सामने जब हम झुकते हैं, उनका पैर छूते हैं, नमस्ते करते हैं, इसका मतलब है उसका कहना मानना, उसकी कही हुई बात पर चलना। एक बार अच्छी तरह समझकर फिर आंख बंद करके चलने का मतलब था विश्वास, श्रद्धा, निश्चय कि ये जो कहेंगे ठीक ही होगा, मान लेना। तो मान लेना, मान देना था, उन्होंने मान कैसा दे दिया, नमस्ते। तो हम हंसी में हमेशा कहती हूं पंडित जी नमस्ते, हम नहीं समझते, वो बच्चों वाली नमस्ते, KG1 वाली नमस्ते कि आप कहते रहो। इसीलिए आपने देखा होगा भक्ति मार्ग में जब कभी प्रवचन आप सुनने गए होंगे तो सुनने वाले ऐसे ऐसे करते हैं, आंख मुचिरेंगे, ऐसे करेंगे, खुली रहे तो भी करेंगे, तुम कितना ही सुनाना हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और ज्ञान मार्ग में आप ऐसे करते थकते नहीं हो कि दिमाग में बैठ रहा है, हृदय कह रहा है करेंगे करेंगे। तो जनरली आप देखना यहां क्लासेस होती हैं या कोई प्रवचन होगा आप ऐसे करेंगे, जी हाँ जी हाँ, कहना मानने वाले बन गए हैं ना, आप बता भी रहे हो, कर भी रहे हो। तो कहां भगवान के लिए, उन्हें कहा चंदन घिसो, टीका लगाओ, कहा ना जब भक्ति में चंदन घिसते हैं। अब चंदन कौन सा घिसना था, मेहनत का, कि ज्ञान मार्ग तलवार की धार, इधर गिरे तो कुआ, उधर गिरे तो खाई, बीच में आफत आई, चलना ही पड़ेगा, मेहनत का मार्ग है। तो उन्होंने क्या घिसवा दिया आपसे, चंदन, मेहनत का, तुलसीदास चंदन घिसे और शिव बाबा तिलक देत रघुवीर, वो भावना थी। तो भौतिक चंदन, और चंदन का भी मिसाल बताया नहीं, टीका तो लगाया पर टिके नहीं। तो भक्ति में शुरुआत में बैठे रहते हैं पंडित पुजारी, वो टीका लगा देते, हमने लगा लिया, भूल गए कि यही क्यों लगाया, वो चंदन कहीं क्यों लगाया, कि चंदन जैसे से यहां लगाया तो याद रहे कि तुम आत्मा दिंदी है, और देह भान में रही तो के दिन भर कारोबार में बरतो, मंदिर से निकलकर इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं भक्ति में, कई भक्तों को हमने कहते ना पीट करके मत निकलना मूर्ति से, हम तो सीधे सीधे निकलते हैं। अरे जैसी मुड़े सारी बातों की तो पीठ है, कहना एक मानना नहीं है तो पीठ ही तो हो गई। यहाँ तो पीठ का कोई सवाल नहीं है, कोई दिशाओं का सवाल नहीं है, कोई मूर्ति का सवाल नहीं है। बाबा ने कहा मैं तो परमधाम में बैठा हूँ, कुछ भी करो उल्टे सीधे, कुछ बोला नहीं ऐसा बाबा ने। वहां तो एक एक बात के अंदर ज्ञान दिया कि ऐसा मत करना, बड़ी बात रखी। आप लोग पीठ करके प्रवचन करते, हम लोग हमेशा ही ऐसे करते, पीछे मंदिर होता है मूर्ति रखी प्रवचन पीठ कर लेते हो। अरे मैं कहा पीठ करने का मतलब है उसकी बात को टालो मत, हमारे पॉजिटिव वे में कहते पीठ करो यानी फॉलो अप करो। तो वो तो किया नहीं, टीका लगवाया। आप टीका भी लगवाया तो इंद्रियों पे, यहां 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 पेट पर गले पर देखो कहां कहां लगाया कि अरे भाई चंदन जैसा सुवासित सुगंधित इन इंद्रियों से कर्म करो, कमाओ तो अच्छा कमाओ, खाओ तो परहेज का अच्छी कमाई का खाओ, बोलो तो अच्छा बोलो, सुनो तो अच्छा सुनो। इसी के प्रति एक जगह जगह टीका लगा दिया, हेजे वेजे का टीका लगाते हैं ना तो अपने को वो बीमारी नहीं होती है, तो उन्होंने टीका नाम रख के यहां एक बार लगा दिया। अब सारी इंद्रियों में उसकी प्रकंपन फैलना चाहिए थे, पर भक्ति में तो नहीं फैले, वो तो मात्र एक दिखावे का ड्रामेटिकल रह गया, प्रैक्टिकल तो रहा ही नहीं, पार्ट बजाने के लिए रह गया। अब बाबा ने कहा करते तो थे ना, अभी भी टीका लगाए रखो, पर दिखावे का बल ना लगाया हम लोगों ने, कोई चंदन का कोई रोली का, पर कर्म में तो टिके है ना उस स्थिति में। भक्ति मार्ग में भी गहनों के श्रृंगार में कानों में सुन्ना पहनाया, सोना पहनो बड़े बड़े झाले पहनो, तो झाले और सुन्ना तो पहन लिया पर सुनना, ज्ञान का श्रवण पहनो, यानी हमेशा ये कान क्या सुनते रहे, ज्ञान की बातें अच्छा सुने, उसका प्रतीक सोना पहनना महत्व दिया। तो सच्चा आत्मा का श्रृंगार था सुनना, तो ये इंद्रियों में पहना दिया, अर्थ तो समझा नहीं। तो भक्ति ने बिना अर्थ के आपको कार्य कराया, पर ज्ञान में जब आते हैं तो वही भक्ति मार्ग ज्ञान सहित अर्थ सहित आपको समझ में आता है, तो अनर्थ रुच जाता है, तो वहां नमस्ते करी। फिर कई लोग चरण में भी गिर पड़ते हैं। अब भगवान ने देखो कितनी अच्छी बात बोली कि हे मीठे बच्चे आचरण करो, क्या बोला, मम्मा बाबा को फॉलो करो, उसको अपन नॉर्मल भाषा में कहेंगे आचरण करो। उनने करो को धीरे से कर दिया, क्यों आचरण मेन से भी नहीं हो रहा था ना, तो भाव क्या बदला देहभान में आने पर, आचरण परो, करो को क्या कर दिया परो, तो फट से पैर छुए और चल दिए काम पूरा। कोई को आचरण करने ही नहीं थे ना, क्योंकि बताया ही नहीं ना कि वो मूर्ति समान आचरण करो, इष्ट के आचरण पर चलो, वो बताए नहीं। ऐसी भक्ति मार्ग में जो तीर्थ चले या घर से मंदिर आने का जो मार्ग था, वो सड़क मार्ग तो था ही शरीर के लिए चलकर आने का, पर था वो आचरण मार्ग। जो मंदिरों में सीढ़ी चढ़ना था वो भी कोई दिव्य गुण दिव्य शक्तियों का मार्ग था, एक एक स्टेप पे एक एक मार्ग था कि ये गुण धारण करो, ये गुण धारण करो, ये करो तब प्रभु दर्शन मिलेंगे। तो उसको उन्होंने भौतिक सीढ़ियां बना दिया और बड़ा महत्व दे दिया, इतने हजारों सीढ़ी वाली देवी, अरे तो अमरनाथ तो बाबा को तो सबसे ही ऊंचा कर दिया, इतनी पहाड़ी पहाड़ी चढ़ाई पर चढ़ो तब बाबा दर्शन देंगे। अरे शिव बाबा भोलानाथ बाबा जिसकी इतनी अच्छी शिवरात्रि हम मनाने यहां सब पधारे हैं, वो तो खुदा है मन चंगा तो कटौती में गंगा, सारे तीर्थ तो हमारे पास आ गए, सारे नदियां हमारे हमको घर बैठे सब मिल गया। भक्ति में भाग भाग कर मिलता था, यहां भगे देखो कितना अच्छा नाम है भगत, भगते रहे भगत रहो, और ठगत भगत प्लस ठगत, वो ज्ञान मार्ग में बैठ जाओ, चुपचाप बैठो, साइलेंस में बैठो, मौन में बैठो, सुनो बाबा क्या कह रहा है। हुआ ना अंतर, वो समझते थे यहां नहीं मिला तो यहां मिलेगा, यहां नहीं मिला तो यहां मिलेगा, यहां तो बाबा एक जगह मिल गया, एक सादे सब सदे और सब साधे सब जाए। भक्ति में सबको साधते रहे, वो जरा सा पाठ हम नहीं समझ पाए, जरा सा पाठ क्या था, जैसे लौकिक में स्त्री पुरुष की शादी होती है तो ब्राह्मण बैठकर उनका हाथ उनका पल्लव मिलाता है और फेरे पहनाता है, दलाल बनकर हाथ मिला देता है, पति पत्नी को मिला देता है, काम खत्म। अब स्त्री किसको याद करती है निरंतर, ब्राह्मण को करती है? नहीं, जिसके साथ शादी हुई पति को याद करती है ना। इतना सा पाठ हम नहीं समझ पाए, मिलाने वाले अनेक गुरु स्थान तीर्थ पंडित पुजारी महात्मा हो सकते हैं, ये दलाल हो सकते हैं हजारों ने, पर हमें मिलाया जिससे वो पता ही नहीं, क्योंकि हमारा जो संगम है, जो मिलन है, जिसका प्रतीक शिवरात्रि पर मिलन दिखाया आत्मा परमात्मा का, वो किससे हुआ है? शिव बाबा से। तो एक इष्ट की प्रथा चली, तो वहां भी हम आचरण करो का आचरण करो। अभी देखो वहां पर कितनी अच्छी अच्छी बातें आपको सुनाती हूं। अभी फूल चढ़ाओ तो उन्होंने क्या करा, पूजा की विधि में हार और फूल का महत्व है, तो फूल कौन से तोड़ लाए, डाली के फूल, भौतिक बगिया के डाली के फूल, क्योंकि जड़ता थी ना, और वो चढ़ाया। उसमें भी बाबा ने कहा फूल चढ़ाओ, समर्पण, तो फूल चढ़ाओ को उनने क्या कर दिया, फूल चढ़ाओ, और हार चढ़ाओ तो हे हरियर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, ये भी कहा एक तरफ, और भौतिक माला भी चढ़ाते रहे, पर माया से हार भी खाते रहे। तो अभी ज्ञान में आकर बाबा ने हमको ये बताया कि यहां पर बलि पत्र चढ़ना, फूल चढ़ना, बलि जाना ही चढ़ावा है, जिसको भक्ति मार्ग में देवियों के दिनों में और ज्यादा प्रेम बढ़ाना, उनके फूल से मन नहीं भर रहा तो गला चढ़ाओ, गाली चढ़ाओ, बुरी बोली चढ़ाओ तो जीव चढ़ाओ, वो ना चढ़ाई बुरी बोली गाड़ी गाली देना, जीव चढ़ाओ। बाबा ने जीव नहीं मांगी, वो भक्ति में भी चढ़ाए तो लौट गई थी फिर लग गई। बाबा ने क्या मांगा, कड़वी बोली, गंदा खान पान, गाली आदि के संस्कार, ये चढ़ाओ, यानी मुख से क्या चढ़ाओ, बुरा। जिसकी यादगार में आप देखेंगे महाभारत के प्रसंग में आता है कि श्री कृष्ण बनने के लिए सबसे पहले शिशुपाल को मारा, जो प्रतीक था गाली देने के संस्कार का, शिशुपन से जिसमें पल रही थी गाली देने का संस्कार, लास्ट में 101 गाली दी, तब श्री कृष्ण का चक्र चला, कहानी में आता है, तो गला कटा। तो गला कौन सा काटना था, ज्ञान के प्रथम में गाली देने का संस्कार काटते हैं ना। रामायण में भी आता है, राम ने युद्ध जब शुरू किया तो पहले ताड़का को मारा, तड़ाक बोलने वाला संस्कार, तड़ाक तड़ाक कड़वा बोलने वाला संस्कार, वो ताड़का का प्रतीक दिखाया, जो यज्ञ में प्रथम विघ्न डालता था, जो राक्षसी के रूप में दिखाया। अब समझना है ना कि किन देवता बनने के लिए हमने किन राक्षसों को मारा, तो राक्षसी व्रति को मारा, कोई शरीर से राक्षसों को तो नहीं मारा, तो व्रति की प्रतीक हमने क्या लगाई, अगरबत्ती, सुगंधित चरित्र की प्रतीक, सुगंधित वार्ता और वरण बनाने की प्रतीक, वातावरण, तो उन्हें भौतिक स्थान के वातावरण को अच्छी प्यार में, प्यार भरा भगवान उन्हें, कि आज माझा तो आज सुगंध सिंगार, आज फलानी अगरबत्ती, बाबा से प्यार आ रहा था ना मूर्तियों से, तो और खुशबूदार और खुशबूदार और महंगी अगरबत्ती चलाओ, चढ़ाओ, चढ़ाया कुछ नहीं मिला। अब यहां बाबा ने कहा, बोल चाल व्यवहार चरित्र की खुशबू मेरे तक ऊपर पहुंचाओ, यही अगरबत्ती लगाना है। तो भौतिक वातावरण के लिए भले अगरबत्ती लगाई, पर रियल अगर व्रति, अगर हमारी व्रति बदल गई तो भगवान तक हमारी क्या पहुंच गई, कहीं भी किसी स्थान पर रहते अगरबत्ती और यज्ञ की हव्य की खुशबू, ये चढ़ाया। भक्ति मार्ग में मीठा भोग लगाया, मिष्ठानम प्रियम, खट्टा मीठा चिरपरा, कभी भोग नहीं लगाते कसेला बसेला बासा, कोई भी भक्त कभी नहीं लगाता। और ज्ञान मार्ग में भी बाबा कहते कि मीठा भोग तो लगता ही है, पर मीठा बोलो, मिष्ठानम प्रियम, भगवान को सबसे ज्यादा क्या प्रिय है, आप सभी मुरली सुनने वाले यहां बैठे, कौन सी ऐसी दिन की मुरली नहीं होती होगी जिसमें बाबा ने मधुर बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो ना कहा हो। बाबा को सबसे ज्यादा बताओ क्या प्रिय है, ये गुड़ मत दो पर गुड़ जैसा मीठा तो बोलो। नहीं, हम क्या दे सकते। चार वेद छह शास्त्र में लिखी बात है, दोए सुख दीने सुख होते है और दुख दीने दुख होए। क्यों दुख दो, दुख ना देना ही मीठा है ना, मीठा लो मीठा दो। ये हो गया हमारा मिष्ठानम का भोग, जिसका महत्व वहां पर मीठी चीजों से दिया। यादगार तो बनी ना, यादगार ने ही हमार को प्रैक्टिकल, हम लोग ने इस समय स्थित होके वो कर्म किया, इसके बाद दान आया, कुछ डालो अर्पण करो। क्या था भक्ति में, कहा ना धन दान करो तन दान, वो गाते थे आरती में, तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा, वो घर आए तो हाय मरा हाय मेरा। भक्ति में तो ये होता रहा, कभी दिए ही नहीं तन मन धन, बहुत थोड़ा दिया, तब भी आज देखो व्यक्ति दान के महत्व को न समझ पाने के कारण जन्म जन्मांतर गरीब है। गरीब क्यों बने, आज कर्मों की गुही गति कहती है, दान का महत्व न जानने से हम गरीब बनते हैं, हम ईश्वर के करीब नहीं जा सकते। ये कहानी है, सुदामा गरीब क्यों बना, एक कहानी बहुत है, एक सुदामा की बात नहीं कईयों की है वो, पर उसकी गरीबी का मूल कारण छोटी सी कहानी में बताया गया। वे गरीब इसलिए बना, कहते हैं वो एक बार आश्रम में पढ़ने गया, संदीप जी गुरु के आश्रम में, वहां उनकी गुरियानी ने, सुदामा उनका दोस्त था श्री कृष्ण का, एक मुट्ठी चने दिए कि आजा चले जाओ, भूख लगे तो भैया दोनों मिलके खा लेना, एक एक मुट्ठी चने दिए। कहते कुछ ऐसी लीला रची तो दोनों मुट्ठी चने सुदामा खा गया, कृष्ण भूखे रह गए। कृष्ण जैसे आश्रम में वापस लौटे तो बोले मैया भूख लगी है, भूख लगी, बोले बेटा दिया तो थे तुझे चने, तो बोले मम्मा ये तो बड़े भाई खा गए, तो बोले जाओ तुम्हें लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। कहते वहीं पर वो श्रापित हुआ था कि तूने भगवान के हिस्से के चने खा लिए। गरीबी का मूल कारण क्या बना, लोहे के चने क्यों चबाने पड़े उसको, कि प्रभु का हिस्सा खा गए। अब प्रैक्टिकली यहां बाबा क्या बोलता है उसी बात को, कि मैं तुम्हारा सर्व संबंधी हूं। सत्यनारायण की कथा क्या कहती है इसी बात को, रंक राजा जो कहानी आई है, तो राजा से रंक ने पूछा कि प्रभु मैं पूजा करके पाना चाहता, बोले क्या करो, बोले कितना कमाता, मैं लकड़ हा रहा हूं, गरीब हूं, चवन्नी लगा दे, 75 रख ले, 4% तो बताया, 25% तो चढ़ा कम से कम, उत्ती पूजा में लगा, यानी खर्च कर। तो भगवान के हिस्से का खाना, घर में एक सदस्य, आप सभी गृहस्थ वाले बहुत से बैठे हैं, परिवार है, कभी अपने ब्रह्मा बाबा के सामने भी कोई आता था, बाबा पूछते थे कितने बच्चे हैं, पता क्या कहते थे, अगर कोई बोलता था बस चार ही हैं, तो बाबा समझ जाता था मेरा हिस्सा इसने, मेरा बच्चा, मेरे को बच्चा नहीं बनाया है। जो कहते थे चार होते थे, पांच हैं बाबा, ये कहां हो, तो बाबा को कुछ कुछ ये बात लगती थी कि ये अपने हिस्से के मुझे दे रहा, एक हिस्सा। अब विचार करो प्रत्येक चीज में, प्रत्येक वस्तु में, प्रॉपर्टी सभी चीजों में बाबा को एक हिस्सा हमने दिया है। अगर नहीं दिया तो हम भूखे रहेंगे, गरीब रहेंगे। इसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा मिसाल आता है। एक बार राजा अकबर और बीरबल, जिनको आप सभी ने सुना ही होगा कि भले वो राजा मंत्री अपनी पोस्ट पे जब हुआ करते थे, पर जब नीचे होते थे फ्रेंड दोस्त, वो बहुत अच्छे आध्यात्म प्रेमी हुआ करते थे। तो एक बार उन्होंने बीरबल से प्रश्न पूछा राजा अकबर ने, कि राजा अकबर मैं एक बात जानना चाहता हूं, बताओ तीन जन्म का भूखा कौन है और तीन जन्म का भरपेट कौन है। तो बोला महाराज बताऊंगा, चलो घूमने फिरने चलेंगे, चलते फिरते आंसर दूंगा आपको। तो कहते हैं वो एक बार जब घूमने गए तो रस्ते में एक लकड़हारा मिला उनको, उन्होंने बोला महाराज आइए आइए, आपके पहले प्रश्न का जवाब मिल गया, तीन जन्म का भूखा कौन। बोले ये है महाराज। बोले कैसे। बोले देखो महाराज, अब ये लकड़ी काट रहा है, लकड़ी काट के इसको जो भी कुछ मिलेगा वो जाकर खर्च के काम में लेके घर में खाएगा पिएगा सो जाएगा, फिर लकड़ी काटेगा, फिर अभी भी दान नहीं करेगा, पूजा पाठ नहीं करेगा। तो ये पिछले जन्म में भी इसने नहीं किया था, इसलिए ये जन्म भी लकड़हारा बना और अब भी नहीं कर पा रहा है, तो अगले जन्म क्या बनेगा? गरीब लकड़हारा। तो तीनों जन्म भूखे हो गए, भूत भी भूखा, वर्तमान भी भूखा और भविष्य भी भूखा, प्रभु अर्थ नहीं लगाए। फिर एक उनको सोने आगे चले तो स्वर्ण दान करने वाला मिला, बोले ये महाराज तीन जन्म का भरपेट है, माना वो दान कर रहा था। तो बोले कैसे? देखो महाराज, इसने पिछले जन्म में दान किया है तो इस जन्म भी बड़ा बाबा का बच्चा सेठ साहूकार बना, पैसे वाले नौकरी वाला अच्छा बनाए, फिर पूंजी मिली, अब ये फिर दान कर रहा है बाबा के यज्ञ में, मानो तो अगले जन्म क्या बनना है? तो बाबा बोलिए बापुर वर्षे को याद करो, बहुत बड़े वर्षे के अधिकारी बनना है। तो तीनों जन्म के भरपेट कौन बनेंगे? बाबा के बच्चे थे और हैं और बनेंगे, ये बहुत बड़े खुशी की बात है। हम तीन जन्म की भरपेट आत्मा हैं, क्योंकि हम दान कहां कर रहे हैं? सच्चे ब्राह्मणों को। भक्ति मार्ग में भी रामायण का मिसाल आता है, सीता गलत ब्राह्मण को दान देने से चली गई, परखने की शक्ति ना होने से सीधा दिया, पर उस ब्राह्मण ने टेढ़ा कर दिया सीधा। ईश्वरीय कार्य में जो लगे डायरेक्ट वो सीधा लेना था ना, उन ब्राह्मणों ने, नकली ब्राह्मणों ने लेकर, कर्म के ब्राह्मण ना होने के, प्रैक्टिकल जाति के ब्राह्मण और ड्रामेटिकल ब्राह्मण होने के कारण, टोटल मैं कहती हूं रावण ब्राह्मण होने के कारण, कर्म से उन्होंने सीताओं को छल लिया। आदत पड़ी थी सीधा तो देना है, अब ये ना समझ पाए किसको देना है और किसको नहीं देना है। खास माताएं देना है, पर गरीब दया आ रही दे दो। कितना बड़ा कांड हुआ उसका, अपहरण करता ले गया, समझ ना पाने के कारण। आज हमने पहचाना है कि ब्राह्मण कौन, लौकिक में हम ब्राह्मण देखते थे शर्मा या वाला शुक्ला वकला, इनमें पैदा हुए जाति के ब्राह्मण, चोटी रखा है, कांख में बलिया है, कपड़े ऐसे पहना है, ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण वो परख लेना जो ब्रह्मचर्य में रहे, ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा भोजन करे और कराए, ब्राह्मण वो जो ब्रह्म ज्ञान सुने और ब्रह्मा ज्ञान सुने और सुनाए, और ब्राह्मण वो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उठाए, यानी टोटल काम ब्रह्म से जिसका शुरू हो वो हो कर्म के सच्चे ब्राह्मण। और आप जिस स्थान पर पहुंचे हैं वहां सुनाने वाले तो क्या, सुनने वाले उनसे अच्छे परम ब्राह्मण है। हैं आप सभी भी कम नहीं हैं, क्योंकि आप भी उसी नियम धारणा पर चलकर चल रहे पहुंचे हो यहां सच्चे तीर्थ, सच्चे कुंभ पर, धक्कों से बचने के लिए, धक्के खाने के लिए नहीं, आराम का त्याग सुविधा का कर सुविधा पाने के लिए। सब आपको मिल रहा है बाबा के घर में, रहना ठहरना भक्ति जैसा नहीं है, बहुत शांति है, भटक भटक के पहुंच गए। तो भक्ति भावना भरती थी, पर ज्ञान विश्वास और निश्चय विवेक चलाता है। तो भक्ति का वो कार्य विवेक से हम करें, इशारे समझे, इशारा दिया ईश्वर एक, तो ऐसा देख लिया उन्हें यूं कर रहे हैं ऊपर, अभी ऊपर ही क्यों कर रहे हैं, एक ही उंगली क्यों कर रहे हैं, कि ईश्वर एक है ऊपर रहता है, जरा सी बात तो समझना है, चित्र देखकर पता पड़ गया बाबा कहां रहता है, परम धाम में, बाबा एक है, 33 करोड़ देवात्माएं हैं। अब भक्ति मार्ग में हर एक भगवान है, भाग्यवान था उसको कर दिया हर भगवान, तो किसी से ना पूजे तो मुश्किल, इसे ना सबको चढ़ाओ थोड़ा थोड़ा थोड़ा, यहां बाबा एक हो गया ना, कि 33 करोड़ को बनाने वाला कौन, हम सबको बनाने वाला कौन, बाबा। उस बीज में हमने पानी डाला तो पत्तों तक तो ऑटोमेटिक पहुंच गया। तो आप बहुत भाग्यशाली हो, शिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा के घर पधारे हो, क्या कहना, सेंटर से भी ऊंचे महत्व के घर पधारे हो, मधुबन बाबा के घर, क्या बाबा मेरा, कितना ना भोग लगाएं, कितना ना बाबा को प्यार करें, कितना ना शिवरात्रि अच्छी मनाएं, खास महत्व के दिन हम पहुंच गए आग धतूरा चढ़ाने, आती अपने अंदर की गंदगी चढ़ाने, बलि बलि जाने बेलपत्र चढ़ाने, अरे वेर भाव चढ़ाने आए हो ना, भक्ति वाले तो बेर चढ़वाते थे, डाली का बेर चढ़ा दो, बाबा ने कहा वेर भाव चढ़ाओ बच्चों, अंदर जो ईर्ष्या वेर भरा है वो मांगा, ये शबरी के झूठ और वैर के संस्कार चढ़ाओ, उन्हें झूठे बेर कर दिए, हम वही समझे रहे झूठे कर करके बेर चढ़ाए, अरे भील जाति ने भी झूठ और वैर चढ़ाया, हम बाबा के बच्चे ज्ञान में आकर भक्ति के उस रहस्य को समझकर झूठ और वैर के संस्कार चढ़ा दो। कमाल शिवरात्रि की तब है जब हमारा किसी से वैर विरोध ना हो, कितना भी किसने बुरा किया हो, कितना भी हमको कड़वा बोला हो, बुरा व्यवहार किया हो, वैर मिटाओ। विश्वमित्र बाबा का सच्चा बच्चा वो है जिसका विश्वमित्र हो, कहीं भी दुश्मनी नहीं हो, कहीं भी हम दुर्वासा परशुराम भृगु ऋषि नहीं हो, हमारे सब मित्र हैं। क्योंकि मेरा बाबा, बाबा सबको प्यार करता है। उसके बच्चे कैसे बारात में लूले लंगड़े भूत प्रेत सब नचेंगे, आप समझ रहे हैं क्या मतलब है? सभी संस्कारों से ग्रसित आत्मा बाबा की बनेंगी, पर एक बारात में होंगी। अभी मौका हमको मिल रहा है, हम बाराती बने, घराती बने, दर्शनार्थी बने, संगराती बने, या दूल्हे के बगल में चले, कितना अच्छा मौका है। हम क्यों ना बाबा की उस बारात में शामिल होने वाले सभी हम अपने को बाराती समझे। हमारा दूल्हा बाबा 9 तारीख को आने वाला है, क्या ना हमें करना है। तो ये उमंग, अरे भक्ति में उसी उमंग को कहां बताया? नाचो गाओ, ढोलक बजाओ, पीटो ढोलक। अब कीर्तन गाया, आरती गाई, आ रत्ती, रत्ती भर भी जो गा रहे ना वो आ जाए। तभी भक्ति मार्ग में प्रसाद लिया ना, तो भाइयों का तो मुझे पता नहीं कागज में लेते, पर हमारी माताएं पल्लू में लेती थी। अब भगवान ने कहा पल्ले पड़े कछु, कुछ पल्ले तो पड़े, तुमने पल्लू कर दिया। वो प्रसाद, अब बाबा ने कहा सेवा करो, बांटो, ये जो रतन सुन रहे इनको एक एक को बांटना। तुमने कहा प्रसाद मिला पंजीरी थोड़ा सा पेड़ा, अब बांटना है तो भाई मैं बचा के आश्रम तक में भोग मिले ना बचा के रख ली, बच्चों को दूंगी। अब ये भोग से कल्याण होना है क्या? ये तो शुद्ध पवित्र भोग है, ठीक है, किसी किसी पे जादू कर देता है, परंतु बांटना तो ज्ञान था ना, वो कणा दाना नीचे नहीं गिरने देना। तो आप देखो भक्तों को देखो, आप ज्ञानी भी छोटे पड़ जाएंगे उनके आगे, ऐसी श्रद्धा, कणा गिर गया उठा लो, अरे कहीं नीचे मत गिरने देना, पैरों में गिरने का पाप होगा। वास्तविक क्या था? बाबा के रत्नों को नीचे नहीं गिरने, यानी धारण नहीं करते तो नीचे गिर गए ना, उन पर अपन चले नहीं तो वो गिर गए ना, ऐसे गिरने मत दो। तो भक्ति में ये महत्व तो बताया। अभी और चलो आगे, अभी देखो आप पाठ करते थे, कोई रामायण का रोज पाठ करने वाले यहां बैठे हो, जो गीता का, भले अभी बाबा मुरली पाठ करते हो, पर अभी आप सोचना क्या कहा, पाठ करो, समझा? ओ उन्होंने क्या कर दिया, पाठ पढ़ो रटो, तो रामायण पारायण हो रहा है। तो अभी बाबा ने हमको पाठ प्रैक्टिकल उन साहित्य में से, उन किताबों में से, मुरली में से पढ़ना है और करना है। तो भक्ति से ज्ञान की ओर बाबा हमें ले चल रहे हैं। अभी बाबा कह रहे हैं बच्चे आओ, बच्चे आओ। अभी जो बाबा के बच्चे बन जाएंगे सच्चे भक्त से, उन्हें अंत में बचाओ बचाओ नहीं कहना पड़ेगा, बल्कि शरण में आकर बाबा की बारात में मिलकर अधिकारी बन जाएंगे। क्योंकि हम वो आत्माएं हैं जो भगवान को नहीं भगवान की मानते हैं, भगवान को मानते नहीं भगवान की। ओम शांति।